हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जब कुछ देर बाद भी अनाही ने कोई जवाब नहीं दिया तो राधे श्याम ने अपना गला साफ करते हुए कहा, अब तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं? अब तो खुश हो जाओ, मैं मान गया हूँ तुम्हारा डाइवोर्स न करने के लिए। मेरे दिल में जो था मैंने सब तुम्हें बता दिया। उसके आगे की कहानी बहुत प्यारी सी है। मेरे घर वालों ने मेरी अरेंज मैरिज तुम्हारी माँ के साथ करवाई, और देखो वो औरत जिसको मैं कभी जानता नहीं था आज मेरी जिंदगी बन चुकी है। आज भी अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो वो भीख मांगने भी मेरे साथ जाएगी, मुझे इतना विश्वास है। उसकी इस बात पर अनाही ने दर्द का घूंट भरा और धीरे से उससे अलग होते हुए बोली, मुझे भी अपने भगवान पर भरोसा है। उन्होंने जिसे मेरी जिंदगी में लिखा है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। अनाही जरूर तकलीफ और दर्द में थी, लेकिन इसमें भी वो रूहान की इम्पोर्टेंस नहीं भूल रही थी। वो बार बार रूहान के बारे में बता रही थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा शख्स है जिसके बारे में वो पूरी दुनिया को बता सकती है कि वो कितना अच्छा है। वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। अनाही सोफे से उठते हुए बोली, मैं रूहान जी को बुलाकर लाती हूँ। ये सुनकर राधे श्याम और काशी दोनों के चेहरों पर उलझन आ गई। अनाही अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसे दरवाजे पर खड़ा रूहान दिखा, जिसके खुद के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, जिसे देखकर अनाही बिल्कुल हड़बड़ा गई। रूहान जल्दी से उसके पास आया और फिर उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसका सिर सहलाकर बोला, सॉरी मैडम जी, मैंने छुपकर आपकी बातें सुन ली। रूहान की आवाज़ भी भारी थी, जैसे वो खुद रोना चाहता हो, लेकिन उसे पता था इस वक्त अनाही को उसकी कितनी ज़रूरत है, इसलिए वो खुद को मजबूत बना रहा था। वहीं अनाही जल्दी से उससे अलग हो गई, क्योंकि अपने मम्मी पापा के सामने वो रूहान के गले लगने में शर्मा रही थी। उसने अपनी लाल हो चुकी आँखों को उठाकर रूहान को देखा और फिर धीरे से बोली, पापा मान गए हैं कि वो डाइवोर्स नहीं करवाएंगे, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रूहान ने हैरानी से अनाही को देखा और फिर धीरे से कहा, आपको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैडम जी, जिस इंसान ने आपको ठुकराया है इसमें उसी का लॉस है, आपका नहीं। अनाही ज़रूर खुद को स्ट्रांग दिख रही थी, लेकिन भगवान के सामने कैसे और कितनी देर तक स्ट्रांग रह सकती थी? उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। वो उन्हें छुपाते हुए बोली, मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे थोड़ी घुटन हो रही है। ये बातें वो धीरे धीरे बोल रही थी ताकि राधे श्याम और काशी को न सुनाई दे, क्योंकि वो ऐसी बातें नहीं सुन सकते थे कि उनकी बेटी को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रही है। लेकिन फिलहाल अनाही को लग रहा था कि वो इस घर पर पूरी जिंदगी बोझ थी। न उसकी माँ यहाँ थी, न उसका बाप यहाँ था, और उसका तो उसे नाम भी नहीं पता। आखिर उसका वजूद ही क्या है इस दुनिया में, और वो किसके लिए जी रही थी? आज तो उसके पास रूहान है, जो उसका अपना है, जिसने उसका साथ दिया है, जिसने उसकी मांग भरी है, लेकिन इससे पहले उसका कोई नहीं था। वो तो बस ऐसे ही सबको अपनी जिम्मेदारी समझकर एक बेटी का धर्म निभा रही थी। उसने एक नज़र राधे श्याम और काशी को देखा, जो बहुत उम्मीद के साथ उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे कि ये सच बताने के बाद भी वो उसे अपनी बेटी मानते हैं और सामने से अनाही से किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं रखते हैं। लेकिन अनाही के बिहेवियर में बदलाव आना लाजमी था। वो तेज़ कदमों से चलकर उनके पास गई, फिर काशी के गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए मैं आपकी पूरी ज़िंदगी आभारी रहूंगी। ये बोलते बोलते उसकी आवाज़ थरथरा गई। काशी में ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। अनाही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सोचने या न सोचने से क्या होता है माँ, आप मुझसे नफ़रत करती थीं, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती एक ऐसी औलाद को थमा दिया गया था जिसके माँ बाप का ठिकाना भी नहीं है। आपको उसे अपनी बेटी बनाकर पालना भी पड़ा, और पापा उनको तो और भी बुरी बुरी चीज़ें सहनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। उनकी ज़िंदगी का दुख मुझसे शुरू हुआ था, और कल भी जाने अनजाने में मैंने उन्हें वही ट्रॉमा वापस दे दिया जिससे शायद वो उभरने की कोशिश कर रहे थे। इतना बोलकर वो राधे श्याम की तरफ मुड़ी और उनके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच पापा, आइंदा कभी मत कहना कि मैं आपकी बेटी नहीं और आप मेरे पापा नहीं। जिस इंसान को मैंने कभी देखा भी नहीं उसे मैं अपना कभी नहीं कहूंगी। जिस इंसान के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल बिताए, चाहे उसके साथ मेरा खून का रिश्ता हो या ना हो, वो हमेशा मेरे अपने रहेंगे। इतना बोलकर उसने रूहान की तरफ देखा, जो खुद हैरान परेशान खड़ा था, क्योंकि उसके पास इतनी समझ नहीं थी कि वो इस सिचुएशन में आखिर अनाही से ऐसा क्या कह दे कि वो मुस्कुराए और उसकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि अगर वो कुछ उल्टा बोल देगा तो अनाही की तकलीफ बढ़ जरूर जाएगी, इसलिए वो बस शांत खड़ा था। अनाही मुस्कुराकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आपको भी थैंक यू। अब ये मत पूछना किस लिए, क्योंकि मैं अभी नहीं बताना चाहती हूँ। रूहान ने जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना अगर आपको कुछ नहीं बताना है। रूहान का ऐसा रिएक्शन देखकर अनाही को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने राधेश्याम और काशी से इजाज़त ली और फिर तेज कदमों से चलती हुई घर से बाहर निकल गई। रूहान ने एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको आपका पास्ट याद आ गया और आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो हाँ, वो लड़की थी मेरे साथ, लेकिन मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही संभाल पाना हर किसी के बस में नहीं है, इसलिए वो खुद ही मुझे छोड़कर चली गई और अब उसे मेरी जिंदगी में वापस आना है, इसलिए वो ऐसे परेशान कर रही है। अगर वो फिर से आपसे मिलने आए तो आप मुझे बता देना, मैं देख लूंगा उसे। और जो दूसरी लड़की थी, वो मेरी दोस्त है, मैं उससे मिलना बंद नहीं कर सकता हूँ, वो बचपन से मेरे साथ है। रूहान को एक्सप्लेन करते देखकर काशी ने जल्दी से कहा, हाँ दामाद जी, आपने इतना कहा वही काफी है, अब छोड़िए, आपके ससुर जी तो बस ऐसे ही हाइपर हो जाते हैं। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर रूहान के होठों पर अपने आप स्माइल आ गई। फिर वो लगभग दौड़ते हुए घर से बाहर जाते हुए बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, वरना मेरी मैडम जी नाराज हो जाएगी। उसे ऐसा बोलते देखकर राधेश्याम और काशी, जो कुछ देर पहले गम में डूबे थे, वो अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़े। रूहान बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अनाही उसकी टीचर हो और वो कुछ भी गलत करेगा तो अनाही उसे पनिशमेंट दे देगी। साथ ही साथ उन दोनों के मन में ये भी संतुष्टि थी कि अनाही ने रात को खाना खा लिया था। रूहान जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और एक नज़र पैसेंजर सीट पर बैठी अनाही को देखा, जिसका सिर सीट पर टिका था, आँखें बंद थीं और आँखों के कोने भीगे हुए थे। रूहान का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो बहुत कुछ बोलना चाहता था जिससे अनाही का मन शांत हो जाए, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैडम जी, आप कहीं घूमने जाएंगी, आपको अच्छा महसूस होगा। अनाही ने आंखें खोलकर रूहान की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ खिसकते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए बोली, आप जहाँ पर मुझे ले चले मैं वहाँ जाऊँगी।
रूहान ने कुछ देर सोचा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर ली। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज वो मैडम जी को अपना अड्डा दिखाएं, जहाँ उसका वो दूसरा रूप है जो किसी ने नहीं देखा है। मन ही मन थोड़ा डर भी था कि कहीं अनाही ये न बोल दे कि वो अपनी स्टडी को टाइम देने की बजाय ये क्या बेहुदा हरकतें करता है।